أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام الرسول والصديق المعين. ہم اور آپ دونوں جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جس اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اس نے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے اور ہر بگاڑ کو بنانے اور سنوارنے کا طریقہ بھی واضح فرما دیا ہے. بس اتنی بات ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے نہیں، جس کے نتیجے میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے کوئی شخص مریض ہو اور ڈاکٹر کا علاج نہ کرائے، حکیم کے پاس نہ جائے، تو اس کا مرض بڑھتا جائے گا، اور مرض جس قدر جلدی کنٹرول کر لیا جائے اتنا ہی آدمی صحت والا اور تندرستی والا ہو جاتا ہے. اور جو لوگ لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھ لیجیے، جو مرض لا علاج سمجھے جاتے ہیں ان امراض کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اسٹیج پر اور دوسرے اسٹیج پر ہے اور جا کے آپ نے چیک اپ کرا لیا تو پھر اس مرض کا علاج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کا بھی علاج ہو سکتا ہے اگر پہلے اور دوسرے اسٹیج میں ہے. لیکن اگر آخری اسٹیج میں کینسر پہنچ جائے اور ایسے امراض پہنچ جائیں جو لا علاج سمجھے جا رہے ہیں، ورنہ اللہ کے کوئی مرض لا علاج نہیں ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو مرض بھی ہے اس کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے، اس لیے دوائیں تو بکھری پڑی ہیں، جنگلات بھرے پڑے ہیں دواؤں سے، اور ابھی تو چند پتیوں کی تحقیق کی ہے. ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنسداں جو ہیں اس لائن کے، وہ چند پتیوں تک پہنچے ہیں. تو جو ابھی ایسے امراض سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں لا علاج، ورنہ اسلام میں کوئی لا علاج نہیں. تو اسی سے یہ بتا دیا گیا کہ بگاڑ کتنا ہی ہو جائے لا علاج نہیں ہے. اس کو میں نے ابھی ایک جگہ بھی عرض کیا تھا کہ مایوسی کفر ہے، اسلام میں مایوس ہونا کفر ہے. تو بگاڑ کتنا ہی پیدا ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. چاہے آدمی کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہ کرنا برا ہے لیکن مایوس ہونا کفر ہے. تو اندازہ لگا لیجئے کہ دونوں میں فرق کیا ہے، ایک تو گناہ کبیرہ ہے، دوسرا کفر ہے. تو ظاہر ہے کفر زیادہ بری چیز ہے. اکثر آج کل یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ بولے غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے اور ہمارا مرض لا علاج ہے، اور اپنے سے مایوس ہونے لگتے ہیں. تو یہ مایوسی کفر ہے. مایوس کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور اپنے علاج کی فکر کرنی چاہیے. ہاں یہ کر سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہ ہو رہا دوسرے ڈاکٹر کا علاج کریں، حکیم سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے نہیں ہو رہا ہے تو حکیم کے پاس جائیں. عقل مند آدمی یہی کرتا ہے. تو ایسے ہی جو بگاڑ ہمارے اندر آ رہا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. اب بگاڑ کی کیا کیا شکلیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ و فتنہ تو امت المال. آپ نے فرمایا ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا خاص فتنہ مال ہے. اور آپ نے ایک حدیث میں ایسی بھی فرمایا کہ فقر و فاقے کا ہم کو تم پر ڈر نہیں ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کشادہ کر دی جائے گی اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے تو اس طرح تم کو دنیا لہو لعب میں مبتلا کر دے گی اور غفلت میں مبتلا کر دے گی جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو کیا, اور اس طرح دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جس طرح پہلے والوں کو ہلاک کیا. تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو یہی لاگ ڈاٹ چل رہی ہے. ایک تو مال اس کے پاس زیادہ ہے اور پھر مال کا اظہار زیادہ کون کر رہا ہے, اسی میں ساری رستہ کشی ہے اور ساری کشمکش ہے. اگر ایک پیسے والا کسی علاقے میں شادی کرتا ہے تو شادی گھر اس کا کتنے پیسے والا تھا یہ دیکھا جاتا ہے, تو دوسرا پیسے والا اس سے اچھا شادی گھر سجاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہے. اور ایک پیسے والا اگر موٹر خریدتا ہے تو دوسرے پیسے والا کہتا ہے کہ ایک نیا ماڈل آیا ہے, میں نے اس کو پہلے ہی بک کرا دیا ہے, تو اس بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ماڈلس آ رہے ہیں اس کو لیٹسٹ ماڈل ہم پہلے جانتے ہیں کیونکہ پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے. تو اس بنیاد پر وہاں بھی یہ لاگ ڈاٹ ہے اور اس سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے والے ہیں. اور اس طرح ہم سراپا دنیا دار بنتے چلے جا رہے ہیں, ہم سراپا دنیا دار بنتے جا رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ جو ہے بعد والا, جس کو ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, یعنی دنیا دار بھی بنو اور دیندار بھی بنو. اس کا ترجمہ تو خیر بعد میں ہوتا رہے گا, لیکن اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کہتے ہیں دین دنیا دار بنو لیکن اچھے دنیا دار, اور دیندار بنو تو اچھے دیندار. لیکن ہم نے آدھا سنا کہ ہم دنیا دار بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے دنیا دار نہیں, دنیا دار ایسے دنیا دار کہ بس دنیا ہی دنیا ہے. اسی لیے فرمایا ایک حدیث میں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے, حب الدنیا راس کل خطیئہ, یعنی جب دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی بالکل کہیں کسی کام کے نہیں چھوڑتی. اور حالانکہ اللہ میاں نے دنیا کے بارے میں فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے بارے میں کہ لو تعدلوا الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر شربۃ ماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر نہ ہوتی تو کسی منکر کافر انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. تو معلوم یہ ہوا دنیا مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یاد رکھیے کہ یہ مچھر جو ہے دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اچھے اچھوں میں نیند اڑا دیتا ہے. تو اگر یوں سمجھ لیں کہ دنیا ہے مچھر, لیکن یہ مچھر ایسا ہے کہ ہر ایک کو کاٹتا ہے, چاہے غریب ہو چاہے امیر. جب غریب کو کاٹتا ہے تو اس کو مرض ہوتا ہے ملیریا کا, اور جب امیر کو کاٹتا ہے تو ڈینگو کا. تو دنیا دونوں کو ٹھکانے لگا رہی ہے. جو عام مچھر ہوتے ہیں جو گندگیوں میں پلتے ہیں وہ تو ملیریا پیدا کرتے ہیں, اور جو فریج میں اور بڑے بڑے عمدہ پانیوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے پیسے والوں کے یہاں ہوتا ہے پانی رک جاتا ہے اے سی کا اور فلاں کا, تو اس میں اللہ میاں نے نیا مچھر پیدا کیا ڈینگو والا. وہ جب کاٹتا ہے تو بخار ڈینگو والا آتا ہے. تو ملیریا کا تو علاج آسان ہے لیکن ڈینگو کا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کا مرض بہت بڑھا ہوا خطرناک ہے, اور جن کے پاس پیسہ کم ہے ان کا مرض کم ہے, تھوڑے علاج سے کام چل جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ایسا ملہمک ہو گئے کہ بس دنیا دار ہی ہو کر رہ گئے. دیکھیے آپ نے اور ہم نے سب جگہ مالدار کس کو کہتے ہیں, जिसके पास दो चार रुपए हो, पांच दस रुपए हो, चलिए 200-400 रुपए हो, उसको ईमानदार नहीं कहते। जिसके पास बहुत ज्यादा माल हो उसको कहते मालदार। लेकिन दीन के मामले में हमारा पैमाना इतना बदला हुआ है कि अगर किसी ने नमाज पढ़ ली 5 वक्त की तो कहते हैं बड़ी जोर से हो गया दीनदार। और अगर कहीं भूले बैठ के उसने कुछ खर्च भी कर दिया तो कहेंगे बड़ा दीनदार। अभी तो नमाज पढ़ने से दीनदार हुआ और खर्च वर्च करने लगा दीनी काम हुआ तो बड़ा दीनदार, बड़ा दीनदार। तो बड़ा दीनदार क्या है अंदाजा लगाइए, कुछ मालूमात नहीं, ना अकीदा दुरुस्त, ना इबादत दुरुस्त, ना मामलात दुरुस्त, ना ताल्लुकात दुरुस्त, ना तिजारत दुरुस्त, ना सियासत दुरुस्त, हैं बड़े दीनदार। ये पैमाना जो है, देखिए हमेशा याद रखिए, ये जो पानी है, पानी जिसको हम पीते हैं, ये पानी कहे से बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों सही मिलते हैं तब पानी बनता है। और ये जिंदगी हमारी जो है जितनी भी सब पानी से वाबस्ता है, इसीलिए कहा गया जानना मिनल माय कुल्ल शैइन हय, हर जिंदा चीज पानी से वाबस्ता है। यहाँ तक कि ये इमारत भी पानी से वाबस्ता है, अगर इसमें पानी न डाला जाता तो खड़ी न रहती। और हम तो बार बार पीते हैं तब जिंदा है, वरना हम चले जाएं। कैसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलाप से पानी बनता है। ऐसे ही रूहानियत और मादियत के सही इम्तिजाज से सही इस्लाम बनता है। इसीलिए कहा गया रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, यानी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी, जब दोनों चीज यानी दीन दुनिया भी अच्छी और दीन भी अच्छा और दोनों का मिलाप भी सही, ये डिसबैलेंस न वो डिसबैलेंस, तब जाके सही दीनदारी और सही दुनियादारी आएगी। जब सही दीनदारी और सही दुनियादारी होगी सारा बिगाड़ खत्म हो जाएगा। ये असल में बिगाड़ सारा उसी का है। आप देख लीजिए कि दुनिया की मोहब्बत ने हमको कहाँ तक पहुँचा दिया, क्या हालत हमारी हो रही है कि आप पैसे के नाम पर जो चाहिए कर लीजिए, और इस पैसे ने और इसकी चमक दमक ने अच्छे अच्छों को अपने दाम में ले लिया है। इसीलिए कुरान जी ने फरमाया गया वाला तमुद्दन आईना ही कैलामा मस्ताना भी अजवाज मिन जहरत हयाती दुनिया लिनफ्तिना हुम फी, ये जो चमक दमक तुमको नजर आ रही है और ये जो रोगन नजर आ रहा है इसको जरा घूर कर ललचाई की नजर से मत देखना, वरना ललचाते भी रहोगे और मिलेगा कुछ नहीं। और जिनको मिला है उनकी मुस्कुराहट से तुम फंस न जाना कि ये शैतानों की मुस्कुराहट है, करीब जाओगे तो अंदर की बेचैनी का पता चलेगा। मैं बहुत कहा करता हूँ, आज देखिए हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से गुजर जाइए, लखनऊ में तो मैंने कई जगह देखा है, यहाँ तो एक ही दिन के लिए आया हूँ, जाहिर है लखनऊ हो चाहे जोधपुर हो कुछ भी हो, हैं सब एक ही थैले के फट्टे बट्टे, जहाँ देखिए एक ही रंग चढ़ा हुआ है दुनियादारी का, तो वहाँ भी लिखा रहता है 5,000 जमा कीजिए और इतने हजार पाइए, और तस्वीर बनी होती है दो आदमियों की दो बच्चों की जो हंस खेल रहे हैं, और लोग देख के ललचा जाते हैं, ऐसा समझते हैं कि अगर मैंने जमा कर लिया तो चेहरा भी ऐसे ही हो जाएगा, बीवी भी ऐसी मिल जाएगी और बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये नहीं बेचारे जानते कि ये हंस जो रहे हैं इनको पैसा दिया गया है कि हंसो, तुमको हम 5,000 दे रहे हैं जरा हंसो, तो बेचारे बड़ी मुश्किल से वो हंसते हैं और फिर घर में जाके 5,000 मर्तबा रोते हैं। जितने पैसे उनको मिले हैं सामने वो हंसते हैं और हंसने के पैसे मिलते हैं और फिर अंदर जाकर रोते हैं, और जब उनके करीब कोई जाता है कि आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है तो कमरे में ले जा कहते हैं कभी आना नहीं इसके अंदर, वरना ऊपर ऊपर फूल खिले हैं भीतर भीतर राग, भाग मुसाफिर भाग, कहाँ चला आया तू। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े इसमें काम करने वाले आजकल तौबा करके आ गए हैं, जिनका नाम मैं मस्जिद में क्या लूँ, मस्जिद भी नापाक हो जाए ऐसे नापाक लोगों के नाम लेने से, नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल बेचारा तौबा करके आया है। तो हमारे पास नौजवानों को शौक हुआ कि ज़रा जाकर उनसे पूछें तो आपकी पिछली ज़िंदगी किस कदर काबिल फ़ख्र थी और सारी दुनिया आप पर टूटा करती थी, अभी भी एक जगह हवाई जहाज़ में बैठे जबकि तौबा कर चुके हैं और नाम उन्होंने नहीं बताया, और हवाई जहाज में जाने लगे तो हवाई जहाज वालों ने पहचान लिया, तो ना उनकी चेकिंग हुई है ना उनका सामान खोला गया। इस वक्त भी उनकी इतनी इज्जत है। जब वो नौजवान उनसे पूछने गए तो कहने लगे, दूर पे ढोल सुहाने आना नहीं, मैं सब चेक कर आया हूँ, चेक करके आया हूँ, चेक कर आया हूँ, चेक करके आया हूँ, सब मैं जानता हूँ कि ये जैसे दूर क्या। एक हमारे यहाँ किताब है, पढ़ाई जाती है, कलीला दिमना, पंडितों में लिखी हुई है, ब्रह्म एक ब्राह्मण की लिखी हुई किताब है और उसका अरबी में तर्जुमा हुआ है। बहुत हम लोग क्या हमारे हजरत मौलाना ने बहुत उसका मुताला किया है, मैंने भी पढ़ा है। तो उसमें लिखा है, बड़े किस्सों की जबान में बहुत बड़े बड़े हकायक समझाए गए हैं। तो उसमें एक किस्सा लिखा है, एक जगह एक ढोल टंगा था और उसको कुछ बजाने वाले जोर से बजा रहे थे। लोमड़ी दूर से सुन रही थी, उसने कहा, ढोल तो बड़े जोर से बज रहा है, जरूर इसके अंदर गोश्त और चर्बी खूब होगी। और देखती रही कि इतनी जोर से बोलने वाले के अंदर होगा तो बहुत कुछ। जब वो चला गया बजाने वाला तो गई और उचक के उसने अपना पंजा मारा, पंजा मारा तो एकदम भक्त से हो गया, अंदर कुछ नहीं था। तो बड़ा उसको अफसोस हुआ कि देखने में तो ढोल इतनी जोर से बज रहा है, अंदर है कुछ नहीं। उसी वक्त से मुहावरा बन गया, ढोल का पोल। ऐसे ही इस वक्त देख, सारी मुस्कुराहटें और सारी मुलम्मा साजियां और सारी दिखावटें जो हमको नजर आ रही हैं, ये सब ढोल का पोल है। ऊपर से मुस्कुराहट, अंदर से परेशानी, ऊपर से जगमगाहट, अंदर से तारीकी, और सामने मोटर और एसी, लेकिन अंदर से ऐसी की तैसी, ये हालत है अंदर। बात ये है कि उन्होंने जो उनको अल्लाह ने दुनिया दी थी उस दुनिया के साथ अच्छा मामला नहीं किया। वही जो मैंने कहा डिसबैलेंस हो गया। दुनिया खुदा ने दी है और दुनिया के जरिए से बहुत ऊंचा मकाम भी पा सकता है, लेकिन पहले दुनिया को जाने और उसके बाद अपने को पहचाने। जब अपने को भी पहचान लेगा और दुनिया को भी जान लेगा तो निअमल मालुस सालेहु लिर्रजुलिस सालेह, क्या कहने ऐसे अच्छे माल के अच्छे आदमी के लिए, तो वो अच्छा माल अच्छा हो जाएगा, यानी वो अच्छा दीनदार बन जाए, दुनियादार बन जाएगा। है तो दुनियादार यानी पैसे वाला, लेकिन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, जो बेचारे पैसे वाले नहीं थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और कहा, हजरत ये पैसे वाले सबका ख्याल भी देते हैं, हम नहीं कर पाते। तो आपने फरमाया, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह 34 मरतबा पढ़ लो, तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सच्चे लोग थे, लेकिन मालदारों को मालूम हो गया कि ये नुस्खा बताया गया है, उन्होंने भी कहा हम भी पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो ये सब फिर पहुंचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजरत वो भी पढ़ने लगे, मालदार लोग भी। तो आपने फरमाया, दाली का फजलुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसको चाहे इनायत फरमाए। तो ये फजल की चीज है, ऊपर पहुंचाती है। इसलिए माल को कुरान मजीद में कहीं खैर कहा गया है, कहीं फजल कहा गया है, कहीं खैर कहा गया है, कहीं फजल कहा गया है, यानी ये जरिया खैर का है और जरिया फजीलत का है, लेकिन हमने उसको मनियामेट कर लिया, यानी हमने तबाह कर दिया अपनी खुदगर्जी से और फजूल खर्ची से और बेजा इसराफ से और गलत खर्च करने से। इसलिए कि अल्लाह मियां ने बताया है कैसे लिया, कैसे रखा, कैसे दिया, तीनों बातें हो गई, कैसे लिया, कैसे रखा, कैसे दिया। लेकिन हमने क्या कहा, हमने लिया, हम जैसा चाहे करें और जहां चाहे सर्व करें, उल्टा हो गया ना, मामला गड़बड़ हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे मसालिक बता दिए कि इसराफ से बचना है, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश्शयातीन, कुरान कह रहा है वो शैतान के भाई हैं जो फजूल खर्ची करते हैं। लेकिन आजकल फजूल खर्ची में मुकाबला है कि फजूल खर्ची में नंबर एक पर कौन है, फर्स्ट ग्रेड का कौन है, इस पर मुकाबला चल रहा है, जो मैंने अभी शुरू में अर्ज किया। तो अगर ये बात सही हो जाए, यानी हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाए माल के सिलसिले में, दुनिया के सिलसिले में, तो आज दुनिया हमारे पैरों के नीचे आ जाए। यानी यूँ कह लीजिए, ज़रा मजीद समझाने के लिए, दुनिया सवारी है, इस पर आप सवार होइए, ये नहीं कि दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लिया। तो क्या होगा अंजाम? मसलन साइकिल है, साइकिल पर आप बैठिए, अब अगर कोई साइकिल उस सर पर रख ले तो लोग कहेंगे दिमाग चल गया है इसका। अगर कोई मोटरसाइकिल को रख ले तो वो खुद ही चल जाएगा, उसका तो दिमाग चला ये खुद चल जाएगा, और अगर मोटर रख ले तो कुछ नहीं जाएगा। तो अंदाजा लगाइए आप। तो आज हाल ये है कि लोगों पर माल सवार है। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, आज से तकरीबन 70 साल पहले की बात है, बड़े आसमानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हजरत खानवी के खलीफा थे और नदवे के बड़े फाजिल थे। देहानत में तो उनका जवाब ही नहीं था। अगर पूरे हिंदुस्तान के 2-4 रहीम तरीन आदमी जमा किए जाए तो उनमें से एक मौलाना का नाम भी होगा। लेकिन मौलाना के साथ वाकया पेश आया, उन्होंने उस जमाने में मोटर खरीदी। आज तो मोटर खरीदना आसान है, लेकिन उस जमाने में उन्होंने मोटर खरीदी, चंद दिन रखी है, चंद महीने, ये हमको याद नहीं है, और उसके बाद उन्होंने बेच दी। लोगों ने पूछा, मौलाना आपने मोटर खरीदी और बेच दी? कहा कि मोटर पे मैं 2 घंटे बैठता था और 22 घंटे मुझ पर सवार रहती थी, ऐसी सवारी नहीं रखते जो मुझ पर सवार रहे, उन्होंने बेच दिया। तो असल बात यही, मौलाना की फिक्र सही थी। अब वो फिक्र मेरे लिए, आज ये खराब हो गया, कल वो खराब हो गया, आज ये मांग रहा है, कल वो मांग रहा है, इससे झगड़ो उससे रगड़ो, ये सब मामला नहीं चलेगा। तो आज मामला यही हो गया कि हम पैसा कमाते तो कम है लेकिन सवार ज्यादा है। तो आप किसी पर साइकिल सवार है, किसी पर मोटरसाइकिल सवार है, किसी पर मोटर सवार है, किसी का मुकाबला चल रहा है, बस उसको उतार दें। इसी वजह से माल को कुरान मजीद में क़ियामन कहा गया है, यानी माल से क़ियाम है। तो अब जाहिर है क़ियाम का मतलब ये हुआ कि पैर है माल, माल पैर है, सवारी है, तो सवारी पर आप सवार होइए, अपने ऊपर न सवार कीजिए। ऐसी पैर है, पैर को सर पर न रखिए या सर को पैर पर न रखिए, दोनों बातें हो गई। कोई मालदार नहीं है, वो मालदार के पास आए खुशामद करे तो गोया कि उसने सर पैर पर रख दिया, और मालदार अगर किसी के सर पर पैर रखे तो वो भी गलत, यानी पैर को न अपने सर पर रखे न दूसरे के सर पर रखे। इसलिए मालदार अगर सही हो जाए तो सारा मसला हल हो जाए, लेकिन जब मालदार सही नहीं होता और दुनियादार बन जाता है तो फिर मच्छर उसको काटता है। इसी वजह से कोई मलेरिया में मुबतला है और कोई डेंगू में मुबतला है, तो उन सब का इलाज ये है कि माल को लगाइए। अब मालूम कीजिए कहाँ कहाँ लगाना बेहतर है। तो पहले तो अब देखिए इसमें भी उल्टा कर देते हैं, अक्सर लोग माल जो खर्च करते हैं वहाँ भी मामला उल्टा कर दिया। माल को पहले खर्च कीजिए अपने अजीजों में जो गरीब हैं, जो आपके गरीब अजीज हैं पहले उन पर खर्च कीजिए। अक्सर लोग गरीब अपने जो अजीज होते हैं उनको नहीं देते और दूर जाकर लेते हैं गैरों को, इसलिए घर में तो लड़ाई चल रही है, अक्सर अजीजों में लड़ाई देखी, कोई घर ऐसा बता दीजिए जोधपुर में जिसमें लड़ाई हो। ये मामूली बात नहीं कह रहा हूँ, आप बता दीजिए, मैं जोधपुर वालों को मान जाऊंगा कि जिसके भाइयों में मेल हो, चचा भतीजे में मेल हो, मामू भांजे में मेल हो, ऐसा ही नहीं कोई घर नहीं मिलेगा, हर जगह खटपट। लेकिन अल्लाह मियां कहते हैं खटपट को दूर करने के लिए पैसा दो झटपट। तो अगर तुम पैसा दो अपने अजीजों को, खर्च करो, तो फिर क्या होगा, बहुत ऊंचा मकाम होगा। इसीलिए फरमाया गया सिला रहमी करो, रिश्तेदारी निभाओ, और उसमें रिश्तेदारी निभाने का ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा करेंगे तो हम करेंगे, अरे ये तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं। अगर आपने किया तो कौन सा भला किया, ये है कि वो आपके साथ बुरा सलूक करें, आप अच्छा सलूक करें, ये रिश्तेदारी निभाना है। तो अब मामला ये है कि उसमें जी नहीं चाहता कि इनको दे, ये मुझे ही गाली देगा, पैसा भी खाएगा मुझे गाली देगा। अरे हर असल में हम लोग भाई कहते हैं हमारा दिमाग जो है उल्टा हो गया, इसीलिए इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं। तो जब हम उसको देंगे और गाली भी देगा तो मालूम है क्या फ़ायदा होगा, हम जब देंगे तो आखिरत में हमको मिलेगा, वो गाली देगा तो नकद सवाब यहाँ मिलेगा आखिरत में मिलेगा। गाली देने का सवाब बहुत है, हम उसको बर्दाश्त करें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया लिखा है, बहुत दिलचस्प वाक़िया है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, उनका एक पड़ोसी था, था कुछ संकी किस्म का, हज़रत इमाम साहब को गाली देता था, बुरा भला कहता था। जब इमाम साहब को बुरा भला कहते थे तो वो हदिया भेजते थे, जाहिर है कि कब तक गाली देता, कैसे ही पागल आदमी हो, लेकिन सोचने पर तो मजबूर हो जाता है कि अजीब आदमी, मैं गाली देता हूँ बुरा भला कहता हूँ ये हदिया भेजते हैं। उन्होंने गाली देना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद इमाम साहब ने हदिया देना बंद कर। अब बोलिए हम लोग होते तो डबल हदिया करते कि उसने ये काम किया, इमाम साहब ने हदिया देना बंद कर दिया। वो आया इमाम साहब के पास और कहने लगा, हजरत ये तो बता लीजिए कि जब मैं बुरा भला कहता था तो आप हदिया भेजते थे और बहुत कुछ भेजा करते थे, अब जब से मुझे बुरा भला कहना छोड़ दिया आपने, हदिया देना बंद कर दिया, तो हजरत इमाम साहब ने क्या बात फरमाई? फरमाया कि जब तुम मुझे बुरा भला कहते थे तो मेरी आखिरत बनाते थे और मैं थोड़ी सी दुनिया तुमको दे देता था, मैं तो कम देता था, तुम मुझे बहुत देते थे, जब तुमने मेरा नुकसान किया तो मैंने तो थोड़ा सा तुम्हारा नुकसान किया। अब अंदाजा लगाइए इन हजार की सोच क्या थी और हमारी सोच क्या है। तो आज कितने लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को पर खर्च करते हैं और अपने अजीजों को जाकर देते हैं, खासतौर से उन अजीजों को दीजिए जो आपको बुरा भला कहते हैं लेकिन है बेचारे कमजोर, क्योंकि जिसका जिसके पास माल कम होता है उसका दिल भी कमजोर हो जाता है, वो जल्दी रूठता है। अगर आपने जरा सी नजर फेर ली तो रूठ गया, तो आप उसकी खिदमत में जाएं और उसको जाके कुछ दें तो इससे आपका दिल धुलेगा और आपके और हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी और मोहब्बत दुनिया में निकालना ही असल है। जिसको हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि पैसा जेब में रखो दिल में न रखो, तो पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पैसा दिल में है न जेब में है और न बैंक में है तो उससे बुरा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। कि पैसा जेब में दिल में रखे हुए हैं जिसका इतना भी फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है और जेब में भी नहीं है। पैसा जेब में रखिए और कहीं जहाँ रखना हो रख लीजिए, मगर दिल में न रखिए, यानी मोहब्बत पैसे के लिए होनी चाहिए। तो जितनी पैसे की मोहब्बत निकल जाएगी इस पर मेहनत करनी चाहिए कि हमारे दिल से पैसे की मोहब्बत निकल जाए। तो जिन लोगों को पैसे की मोहब्बत नहीं है उनके पास रहिए तो अल्लाह ताला आपके दिल से ही पैसे की मोहब्बत निकाल देगा। लेकिन अगर आप ऐसे मौलवियों के साथ रहे जो खुद पैसों के चक्कर में रहते हैं तो जाहिर है कि आपके आपकी जो ये पैसे की मोहब्बत है ये दिन दूनी चार चौगली बढ़ जाएगी। कहेंगे जब मौली साहब इतने पैसे के चक्कर में तो जाहिर इनको देने के लिए तो मुझे और कमाना पड़ेगा। और हाल इस वक्त यही हो गया है, जैसे पानी जब बहुत बढ़ता है तो घर के अंदर भी दाखिल हो जाता है, इस वक्त दुनिया की मोहब्बत का पूरे आलम में ढिंडोरा पीटा जा रहा है और दुनिया ही को असल समझ लिया गया है, आखिरत के बारे में तो कोई बेचारा सोचता ही नहीं। दुनियादार सब हम सब हो गए, हर शख्स के दिल दिमाग में दुनिया भरी हुई है और दीनदारी खत्म हो गई। तो असलन दीनदार होना चाहिए, और दीनदार किसको मैंने कहा शुरू में, दुनियादार उसको कहते हैं जो पैसा बहुत रखता हो वो है मालदार, ऐसे ही दीनदार उसको कहते हैं जिसके पास दीन बहुत हो तब दीनदार है। लेकिन हमने दीन में दीन को समझा बिल्कुल छोटा सा चूजा और दुनिया को समझा पहाड़, तो फिर क्या होगा कि आखिर में होगा ये पहाड़ खोदेंगे निकलेगा चूहा, और जिसको समझा था चूजा वही निकलेगा हीरा। लेकिन आदमी की समझ की बात है, तो अगर आखिरत के लिए आदमी काम करने वाला बन जाए हर वक्त ये सोचे तो फिर पैसा उसके लिए बाइस खैर और बरकत बन जाए और घर जन्नत का नमूना बन जाए और हर शख्स का दिल खुश रहे और दिमाग मुतमईन रहे। तो मेरे भाइयों इस वक्त सारे बिगाड़ का की जड़ यही है, इसीलिए कितना ही समझाते रहिए लेकिन पैसा आगे सब बिगाड़ देता। जैसे बांध बांधते रहिए, हम लोग तकरीर के जरिए से बांध बांधते हैं, समझाने के जरिए से बांध बांधते हैं, लेकिन पैसे का सैलाब इतना जबरदस्त है सब तोड़ देता है बांध, और हम सब बह जाते हैं उसी में और सब उसी में टिंके की तरह बह जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। इसीलिए मैंने एक जगह कहा, जिस जगह इल्म ऊपर और इल्म जो है वो सर है और माल जो है वो पैर है, तो आप जाहिर है कि इल्म को अगर पैर पर रखा जाए तो गया, या पैर सर पर रखा जाए तो खत्म हुआ। इसलिए उलमा को ये नहीं चाहिए कि वो दुनियादार लोगों के पास जाएं और वहां जाकर अपनी पेशानी चेकें, और उसके दीनदार जो हमारे दुनियादार हैं उनको भी दलील नहीं करना चाहिए उलमा को बुलाकर और उनको गलत रास्ता दिखाकर। दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं, अपने अपने काम में दोनों को लगना चाहिए, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी ज़्यादा है इसलिए कि वो वाकिफ हैं। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बिगाड़ का सबब है। इस वजह से उलमा अगर ठीक हो जाए, मशायख ठीक हो जाए, तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी की, इस्लाम कोई पापाइयत का दिन नहीं है कि फला और फला। इस्लाम में तो ये है कि आप ठीक हो जाइए, अल्लाह से ताल्लुक बरह रास रखिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अगर मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो आप कह दीजिए मैं बिल्कुल करीब हूँ। ये नहीं फला के पास जाकर, फला के पास जाकर, फला के पास जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये है कि अल्लाह ताला ने ये बता दिया हम करीब हैं, कोई पुकारो पुकारो। जैसे कोई आड़ में हो और आप ढूंढ रहे हो सारी दुनिया में, तो पीछे से आवाज़ आए मियाँ मियाँ पुकारो, मैं हूँ पीछे ही तुम्हारे, करीब हूँ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तुम्हें शहर लख से ज़्यादा करीब हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। वह हुआ माँ खुमा माँ खुम तो, लेकिन यहाँ भी बात वही इस्तेहजार हो कि अल्लाह देख रहा है। और जिसको जितना इस्तेहजार बढ़ जाएगा उतना ही अल्लाह का महबूब होगा, उतना ही अल्लाह का मुकर्रब होगा, अल्लाह का चाहने वाला होगा, और उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो अल्लाह ताला ने हमको किसी भी दुआ सिखाई है, और एक जगह फरमाया गया है वला तंस नसीबक मिन दुनिया, ये कहा गया है। इसलिए कि इन्नल इंसान लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह ने नज़रअंदाज नहीं किया है। ऐसा नहीं अल्लाह ने आपका हक मारा हो, कहा बोला तंस नसीबक मिन दुनिया, जो तुम्हारा हिस्सा दुनिया का है उसको मत भूलो। इसलिए दुनिया में रहना है, दुनिया में रहना है, दुनिया को मत भूलो, लेकिन दुनिया में मत डूबो। दोनों फर्क है, दुनिया में दुनिया को मत भूलो लेकिन दुनिया में मत डूबो। जिस तरह कश्ती पानी पर चलती है ऐसे ही आप दुनिया को तैरते चले जाइए और पूरा पूरा पार कर जाइए समंदर, कोई आपको पानी भी नहीं लगेगा कपड़ों को, और इत्मीनान से आप पार कर जाएंगे। इसलिए दुनिया में तो रहना है, लेकिन ऐसा रहना है कि दुनिया का असर ना पड़ ले पाए किसी एतबार से। देखिए तो हीद पर अगर दुनिया का असर पड़ेगा तो शिर्क आएगा, और इबादात पर अगर दुनिया का असर पड़ेगा तो रियाकारी आएगी, और मामलात पर दुनिया का असर पड़ेगा तो मक्कारी आएगी, फनकारी आएगी, और सियासत में अगर दुनिया का असर आएगा तो झूठ फरेब और धोखादही आएगी, और तिजारत में अगर असर आएगा तो झूठ बोलना और झूठ के जरिए से अपनी तिजारत को फरोग देना आएगा और धोखा देना आएगा। गरज के इसको पास करना है, और पास करके सारी चीज अल्लाह के यहाँ पेश करनी है, क्योंकि कुरान जी ने फरमाया गया है अला लिल्लाह दीनुल खालिस, याद रखो अल्लाह के यहाँ है दीन खालिस। अल्लाह के यहाँ क्या चीज कबूल होगी? खालिस दीन, खालिस दीन यानी अल्लाह के यहाँ वो दीन पसंदीदा है जो बगैर मिलावट के हो, और जब हम मिलावट से पेश करेंगे तो अल्लाह नहीं लेगा। जैसे हम नहीं लेते हैं, अगर हमको मालूम हो जाए कि तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, और दालों में मिलावट है, ये मामूली मामूली चीज़ों में मिलावट है, तो क्या हम कबूल कर लेते हैं? जहाँ मालूम हो जाए तो खरीदने नहीं जाते। तो अल्लाह मियाँ ऐसे ही खुदा ना खास्ता वो कुछ जानते नहीं क्या कि हम मिलावट अकीदा शिर्क की मिलावट उसमें पाई जाती है? क्या कबूल कर लेगा? अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, अल्लाह बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। ऐसी मिलावट नहीं होनी चाहिए, जो भी मैंने बताई ऐसी मिलावट से पाक होना चाहिए। और ये उसी वक्त होगा जब दुनियादारी हमारी सही हो जाए और दीनदारी सही आ जाए। जब सही दीनदारी होगी तो मैंने कहा दुनिया और दीन का सही कंबाइंड होगा, जब सही दोनों जुड़ जाएंगे तो इस्लाम का आबे हयात मिलेगा, यानी इस्लाम का जिंदगी का पानी मिलेगा। इसी वजह से बगैर इस्लाम के कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, बगैर इस्लाम के। आपने फरमाया क्याला ममई अस्तर इस्लाम दीन फल युकबला बिल, यानी कि अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। इस्लाम के माने उसमें लोग जानते नहीं, इसलिए लोग ये समझ रहे हैं इस्लाम मजहब, ये सब कुछ नहीं है। ये मुसलमान कौम, ये मुसलमान कौम वाम कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में ये है कि जो अल्लाह के अपने आप को हवाले कर दे और उसके सामने समर्पण हो जाए, झुक जाए और सरेंडर हो जाए, वो है मुस्लिम। मुस्लिम के माने असल में यही है, अल्लाह को मानकर अल्लाह की मानकर चलने वाला सही तौर पर, वो है मुस्लिम। अब अगर हम ये समझते हैं ये कौम मुसलमान और ये मजहब, मजहब मजहब कुछ नहीं, जो अल्लाह का एक मजहब एक दीन है ऊपर से चला आ रहा है हजरत आदम से लेके इस वक्त तक, जब उसमें बिगाड़ आ गया نبی آ گیا، بگاڑ ٹھیک کر دیا، پھر بگاڑ آ گیا، نبی آ گیا ٹھیک کر دیا، آخر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے کہا مکمل دے رہا ہوں، یہ مکمل کافی ہے، اب اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، گھٹا نہیں سکتا، اور اس کی حفاظت اب ہم کریں گے۔ اس سے پہلے تو انبیاء کے ثبوت کر دیے ان کی قوموں کے، بھائی کتاب دے رہے ہیں تم حفاظت کرو، لیکن اللہ یہ جانتے تھے کر نہیں پائیں گے، جب وہ نہیں کر پائے تو سارے تجربے جب سامنے آ گئے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ انسان نہیں کر پائے گا، تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اب ہم حفاظت کریں گے۔ تو ظاہر جب اللہ نے ذمہ لے لیا تو سارے لوگوں کے ذہن کھول دیے، سب حافظ ہونے شروع ہو گئے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کوئی انجیل کا حافظ نہیں، بائبل کا کوئی حافظ نہیں، ویدوں کا کوئی حافظ نہیں، گیتا کا کوئی حافظ نہیں، اور گرنتھ صاحب کا کوئی حافظ نہیں، کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اور قرآن مجید کے صرف ہندوستان میں 50 لاکھ حافظ ہیں، صرف ہندوستان میں 50 لاکھ۔ ہمارے ہاں میں ندوہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سکھ صاحب آئے، وہ پولیٹیکل سائنس میں پروفیسر تھے، ڈاکٹریٹ کیا تھا، وہ پروفیسر تھے، لیکچر دینا تھا ان کو قرآن مجید پر، تو ہمارے یہاں ندوے آ گئے، کسی نے ہمارے پاس بھیج دیا، تو انہوں نے کہا دو راستے تھے، ایک میں اسٹڈی کرتا، وہ بڑا لمبا راستہ، میں صحیح پہنچتا نہیں پہنچتا، کون سی کتاب پڑھوں کون سی نہ پڑھوں، اور ایک یہ ہے کہ جو اس پہ اسپیشلسٹ ہے اسے پوچھ لوں۔ تو لوگوں نے آپ کا نام بتایا، میں آپ کے پاس آ گیا، ہم نے کہا تشریف رکھی، پھر جو بہت سی باتیں ہوئی اس میں سے ایک بات میں نے ان سے پوچھی، گرن صاحب جو آپ کے یہاں ہے جب ریپرنٹ ہوتی ہے تو گھٹاتے بڑھاتے ہیں کچھ، یا سمجھتے ہیں گھٹایا گیا بڑھایا گیا؟ خیر ہم لوگ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، ضرور گھٹا دیا جاتا ہوگا، بڑھا دیا جاتا ہوگا۔ ہم نے کہا بس یہ مسئلہ حل ہو گیا، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، یعنی اگر سارے مولوی مل کر چاہیں گھٹا دیں بڑھا دیں تب بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو مشورے دیتے رہتے ہیں دور بیٹھ کے، یہ ہٹا دو یہ ہٹا دو، کہ ان سے کہو جا کے کہ تم نہیں سارے مسلمان مل کر بھی ہٹانے چاہیں گے تو نہیں ہٹا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ہم حفاظت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے برابر کون ہے، آ جاؤ بھائی اللہ کے مقابلے میں جس کو آنا ہے وہ آ کے دیکھ لے ذرا تماشا کیسا پڑتا ہے چاٹا، پتہ چل جائے گا ان کو کہ کہاں گئے۔ تو اللہ میاں کا معاملہ ہے، اس میں تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ ہمارے جو غلط قسم کے فرقے ہیں، ہمارے ایک مناظرہ ہوا، شیعوں کے یہاں کوئی حافظ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی حفاظت لے لی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو مانتے نہیں، جب نہیں مانتے تو اللہ نے بھی لے لیا ان سے، کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ وہاں مناظرہ ہو گیا، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب اللہ تعالیٰ کی قبر کو منور فرمائے، وہاں ان سے مناظرہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کوئی شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، تو شیعوں نے کہا غلط کہتے ہیں، ہمارے یہاں حافظ ہے، مولانا کہا لے کے آؤ، مولانا بڑے اچھے حافظ تھے، کہا لے کے آؤ میں امتحان لوں گا، اب مولانا نے اس کا امتحان لیا، جہاں سے پوچھا وہیں بھول گیا، پڑھ نہیں پایا، اور اس کے بعد وہاں کا بتاؤ، ایک حافظ تم لائے اس کو بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں حافظ تو ہے، ایسے ہم تھوڑی مان لیں گے، بتاؤ، تو ایک بھی تو نہیں بتا، 50 جگہ پوچھا سب جگہ نہیں بتا پایا، تو وہ آدمی مولانا سے بعد میں آ کر ملا، کہنے لگا حضرت میں سنی ہوں اور میں بہت اچھا حافظ ہوں، یہ لوگ پیسے دے کر لے گئے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے شیعہ بن جاؤ اور مولانا کے سامنے بیان کر دینا، اور میں بھول گیا سب، اتنی دیر میں بھول گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ میاں نے یہ حفاظت اپنے ذمے لی ہے، جب اس میں کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہی گڑبڑ ہو جائے گا، اس لیے ذرا سوچ سمجھ کر، آج جو ہمارے مسلمان تھوڑے سے گڑبڑا گئے ہیں، تھوڑے سے کیا کہوں، بہت گڑبڑا گئے ہیں، اس میں ایک وجہ یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کی کہ قرآن ہے لیکن قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے اللہ میاں کا جاؤ تمہاری حیثیت سے بگڑ گیا، جیسے وہ شیعہ تھوڑی دیر کے لیے بن گیا تو بھول گیا، ایسے ہی جب ہم بدعمل ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ نے وہ برکتیں ہٹا لی، اور آج ہم بے برکت ہو کر رہ گئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ایمان چلا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اور ہم ایمان سے بیگانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھروں میں ارتداد آ رہا ہے، اندازہ نہیں، ہم عبد الرحمان ضرور ہیں لیکن ہمارے حضرت مولانا نے ایک دن فرمایا تھا کہ پتہ نہیں نام عبد الرحمان ہے، اللہ کے یہاں جو رجسٹر ہے اس میں کیا لکھا ہوا، کافر لکھا ہے مسلمان لکھا ہوا ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کا دلوی رحمتہ اللہ علیہ جو میرے تبلیغ بھی رہ چکے ہیں، ایک مرتبہ उनके पास कुछ लोग आए, कहा हजरत फला जगह फसाद हो गया और इससे मुसलमान मर गए। मौलाना खामोश रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, जब तो तीन दफा कहा तो मौलाना जोश आ गया। कहा वो कम मुसलमान थे, कम मुसलमान थे। फिर फरमाया कि जब मच्छर नालियों में पैदा हो जाते हैं तो दवा छिड़कते हो, कभी रहम आता है कि इतने मार दिए, तो ऐसे अल्लाह जब उसके बंदे उसके रास्ते से हट जाते हैं तो फिर कितने मरे अल्लाह को परवाह नहीं। वरना याद रखिए, हदीसों से मालूम होता है, अगर एक मुसलमान लज़वाल दुनिया अहवन अल्लाह मिन क़त्ल रजुल मुस्लिम, पूरी दुनिया तहस नहस हो जाए अगर एक मुसलमान को कत्ल कर दिया जाए। अगर वाकई कोई मुसलमान हो और कोई आगे बढ़कर उसके साथ ये मामला करे तो दुनिया हिल जाए। हिम्मत नहीं है कोई शरीयत का के किसी ऐसे आदमी की ऐसा कर सके। हमारे उलमा के ऐसे किस्से हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत किस्से हैं कि उनके साथ जरा भी, हमारे हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह उनका मकाम यही था, बहुत से दुश्मनों ने, बहुत से बड़े बड़े ओहदे वालों ने बहुत चाहा कि मौलाना को जेल भेज दें, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए जानते थे कि इनकी जबान से जब निकलता है तो मुल्क हिल जाता है, जब इनको अंदर करेंगे तो सब बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए वो जानते थे कि इनके साथ वो मामला, लेकिन इसीलिए एक दो मरतबा ऐसा मामला पेश आया। बहरहाल हमारे बुजुर्गों में ऐसे बड़े बड़े लोग रहे हैं कि अल्लाह ने उनकी लाज रखी है। हमारे हजरत पुराना पुराने वाकयात तो खैर बहुत हैं। हमारे नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया अल्लाह में थे। बादशाह ने कोई गलत काम किया था, पहुंच गए दरबार में और कहा मियां अल्लाह से मांगा है तुमको, अगर गड़बड़ करोगे दूसरे को मांग लेंगे। बादशाह हिल गया। इस तरह के लोग थे। ये उस वक्त होता है जब दुनिया और दीन सही होते हैं, ये असल बात है। दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया छोड़ सकते ही नहीं आप। इसलिए बड़े से बड़ा वली भी आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खाना ना खाए, दुनिया का छोड़ देंगे। अरे कुरान मजीद ने तो अंबिया के बारे में कहा गया है कि गलत फहमी पहले से रही लोगों को, माँ लिहाजा रसूल याकुलिस, अरे ऐसा रसूल कैसा कि खाना भी खाता है बाजारों में टहलता है। वह हुआ रसूल को तो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर बैठा रहे और एक गोशे में पड़ा रहे, न खाना खाए न पानी पिए। आजकल के हमारे लोग भी यही समझते हैं, और ये अल्लाह का मतलब वो ये है कि न खाना खाए न पानी पिए, छू करे तो सब उड़ जाए, ये है औलिया अल्लाह आजकल के। तो हमारे जो इस तरह के झूठे किस्म के लोग हैं वो इस तरह के वाकयात बयान भी कर देते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ वहाँ यूपी में एक आगे बैठ गया कहीं बाबा, उसने कहा कि मैं इतना पहुंचा हुआ हूँ कि सरापा नूर हो गया हूँ, न पेशाब होता है न पखाना। एक हफ्ते तक वहां ठहरा रहा और माशाल्लाह हमारे अवाम का हाल तो क्या कहने, कल अनाम जानवर हो गए, ना अकीदा है और ना सही फहम है ना समझ है, भीड़ चली आ रही है। एक दिन रात को पकड़ा तो पानी में फेंक रहा, पन्नी में भर के फेंक रहा तो पकड़ा गया, फिर लोगों ने बाद में पिटाई की। तब ऐसे से पहले ही समझ लो कहीं दुनिया में ऐसा हो सकता है। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कहे मैं खाता नहीं पीता नहीं तो उसको वहीं पिटाई कीजिए दुर्रे से, तुम इंसान का लो, ये क्या बेकार की बातें हैं। अरे खाओ लेकिन हलाल खाओ। अरे आजकल तो हराम खाते हो, हराम छोड़ दो हलाल खाओ और इत्तेबाए सुन्नत करो, अल्लाह के वली हो जाओ। बस इतनी सी बात है, हलाल खाओ इत्तेबाए सुन्नत करो, अल्लाह के वली बन जाओ। सही नुस्खा आसान, बिल्कुल आसान, आप बन सकते हैं अल्लाह के वली, लेकिन खाएं सही। और जहां लुकमा अंदर गया गलत, बस फिर तो बम है अंदर फटता है जाके। इसी वजह से जब जाहिर है कहीं बम फट जाए स्पोर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आजकल पेट में स्पोर्ट ज्यादा हो रहा है कि हराम से जा रहा है मुंह में, अंदर जाके वो तहस नहस कर रहा है, दिल और दिमाग को तहस नहस कर देता है। तो ये जरूरत, इसकी जरूरत है कि एहतियात। हमारे हजरत मौलाना का हाल ये था कि बहुत जगह खाना ही नहीं खाते थे। हमारे जो ठेकेदार और इस तरह के लोग होते हैं जिनमें गड़बड़ काम, नंबर दो के जो लोग भी काम करते हैं उनके खाना नहीं खाते थे, बहुत एहतियात करते थे। वकीलों के भी नहीं खाते थे, बहुत जगह हजरत मौलाना एहतियात करते थे। ये हमारे बुजुर्गों का मामला है, वो तो एहतियात करते थे खाने में। हम लोगों का हाल ये सब चीज़ बस होना चाहिए, खाने की उमदा चीज़ बस, फिर खाते रहिए। खाते तो देखने में बिल्कुल ऐसा ही है कि बोटी बहुत उमदा है लेकिन अंदर कांटा है। जब वो अंदर कांटा निकलेगा तो पता चलेगा क्या हाल है। तो मेरे भाई और दोस्तों, बस हम सही दुनियादार बन जाए, सही दीनदार, इसी का नाम रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वकीना आज़ाबन्नार। ए अल्लाह, दुनिया भी अच्छी दे दे, आखिरत भी अच्छी दे दे और अजाब से बचा ले। बस यही दुआ कर ले और हमारा मसला हल हो जाएगा। अब हसना की तफसीर तो लंबी है कि हसना किस किस पर उसका इतलाक होता है, लेकिन जो बात अर्ज की गई अगर इतना ही समझ ले तो इंशाल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और दुनिया से हमारी मोहब्बत जो हद से ज्यादा बढ़ी हुई है वो जब नॉर्मल हो जाएगी तो हर चीज ठीक हो जाएगी। उसी को नॉर्मल करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से नफरत हो जाए, ये कैसे हो सकती। ये जो लोग कहते हैं दुनिया से नफरत हो जाए, गलत कहते हैं। नहीं सकता, दुनिया से हमारा जो ताल्लुक है वो नॉर्मल हो जाए। जो अननॉर्मल होगा बस मामला खराब हो जाएगा, डिसबैलेंस होगा, खराब हो जाएगा। ना नॉर्मल रहे ना डिसबैलेंस रहे, नॉर्मल रहे और बैलेंस रहे, इसी का नाम है हमारे हसना। अगर ये हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।